विशाल ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। कमरे में फिर वही शांत खामोशी लौट आई थी। फायरप्लेस में जलती लकड़ियां अब धीमे धीमे सुलग रही थीं। उनकी सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में एक मुलायम गर्माहट बिखेर रही थी। अंकिता कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी नज़र अनायास अपनी हथेली पर बंधी छोटी सी पट्टी पर चली गई। सिर्फ एक मामूली सी पट्टी, लेकिन जाने क्यों उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब विशाल बिना कुछ कहे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने तुरंत सिर झटक दिया। ये मैं क्या सोच रही हूं? अपने ही मन को डांटते हुए उसने हल्की सी सांस ली। दूसरी ओर विशाल भी खिड़की के पास जाकर कुछ क्षण बाहर देखने लगा। कांच पर पड़ती बारिश की बूंदें लंबी लकीरों में नीचे फिसल रही थीं, लेकिन उसका ध्यान बाहर नहीं था। उसके मन में बार बार वही दृश्य लौट रहा था जब अंकिता अचानक लड़खड़ाकर उसकी बाहों में आ गई थी। उसने अनजाने में अपनी उंगलियों को देखा। उन्हीं उंगलियों ने कुछ देर पहले उसकी घायल हथेली थामी थी। उसने आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं, फिर जैसे खुद को संभालते हुए सामान्य स्वर में बोला, काफी रात हो गई है। अंकिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी। दोनों फिर कुछ नहीं बोले। बात करने के लिए जैसे बहुत कुछ था, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं थे। विशाल ने धीरे से कमरे की मुख्य लाइट बंद कर दी। अब सिर्फ फायरप्लेस की नारंगी रोशनी और बेडसाइड लैम्प का हल्का पीला प्रकाश बचा था। कमरा और भी शांत लगने लगा। विशाल ने बिस्तर की ओर इशारा किया। आराम कर लीजिए। उसकी आवाज पहले की तरह संयत थी। अंकिता ने बस सिर हिला दिया। वो धीरे धीरे बिस्तर के एक किनारे जाकर बैठ गई। इतना बड़ा बिस्तर, लेकिन उस पल उसे लगा जैसे जगह कम पड़ गई हो। कुछ क्षण बाद विशाल भी दूसरी ओर आकर बैठ गया। दोनों के बीच काफी दूरी थी, जैसे उस दूरी में ही दोनों की झिझक सुरक्षित हो। विशाल ने तकिया ठीक किया, कंबल हल्का सा अपनी ओर खींचा और बिना उसकी तरफ देखे लेट गया। अंकिता ने भी दूसरी दिशा में करवट ले ली। अब दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। बीच में कई इंच का फासला था, और उससे भी ज्यादा दूरी उनके मनों में। कमरे में केवल घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। फायरप्लेस की लपटें अब कभी तेज होती, कभी धीमी। उनकी रोशनी दीवारों पर हल्के हल्के आकार बना रही थी। अंकिता ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसने धीरे से करवट बदली, ध्यान रखा कि गद्दा ज्यादा न हिले, कहीं विशाल की नींद न टूट जाए। उधर विशाल की आंखें भी खुली थीं। वो छत की ओर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अंकिता भी अभी तक नहीं सोई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों अपने अपने विचारों में खोए रहे। कुछ देर बाद कमरे में और गहरी खामोशी उतर आई। अचानक अंकिता के पेट से बहुत हल्की सी आवाज निकली। वो एकदम सकपका गई। उसने तुरंत कंबल थोड़ा और ऊपर खींच लिया। हे भगवान, उसने मन ही मन माथा पीट लिया। उसे याद आया, रेस्टोरा में उसने ठीक से खाना ही कहाँ खाया था। वो तो पूरे समय झिझकती रही, थोड़ा सा, दो चार कौर, बस। बाकी समय तो वो सामने बैठे विशाल से नजरें बचाने में ही लगी रही। अब उसका परिणाम सामने था। भूख धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने होंठ दबा लिए। काश थोड़ा और खा लिया होता, वो मन ही मन खुद से शिकायत करने लगी। उसे बचपन की बात याद आ गई। माँ हमेशा कहती थी, घर से बाहर जाओ तो पेट भरकर खाना, वरना रात में भूख सबसे ज्यादा सताती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल पेट में फिर खालीपन सा महसूस हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सामने फायरप्लेस की धीमी आंच अब भी जल रही थी। उसने बहुत सावधानी से सिर थोड़ा घुमाकर दूसरी ओर देखा। विशाल बिल्कुल स्थिर लेटा हुआ था। उसका चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में था, सांसें बिल्कुल संतुलित। अंकिता ने सोचा, शायद ये सो चुके हैं। फिर उसके मन में दूसरा ख्याल आया, अगर मैं अभी नीचे जाकर कुछ ढूंढूं और इनकी नींद खुल गई तो। उसने तुरंत वह विचार छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली ही रात है, कैसी अजीब बात लगेगी। उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर सह लेती हूँ, सुबह हो जाएगी। लेकिन भूख मानने वाली कहाँ थी। कुछ ही मिनट बाद उसे फिर खाने का ख्याल आने लगा। गरम रोटी, दाल या कम से कम एक कप दूध। यहां तक कि उसे साधारण बिस्किट भी उस समय किसी दावत से कम नहीं लग रहे थे। वो खुद ही अपनी सोच पर हल्का सा मुस्कुरा दी। देखो, अभी तक कितनी भूख लग गई कि बिस्किट भी याद आने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। फायरप्लेस की गर्माहट, बाहर बारिश की लगातार गिरती बूंदों की मधुर आवाज और पूरे कमरे का शांत वातावरण, सब मिलकर उसकी बेचैनी को थोड़ा थोड़ा कम करने लगे। भूख अब भी थी, लेकिन पलकों पर नींद का बोझ उससे ज्यादा भारी होने लगा। उसने धीरे से कंबल अपने कंधे तक खींच लिया। पट्टी लगी हथेली को सीने के पास संभाल कर रखा। एक लंबी धीमी सांस ली। कुछ ही क्षणों बाद उसके विचार धुंधले पड़ने लगे। रेस्तरां, कांच की चूड़ियां, विशाल की चिंता, सब यादें धीरे धीरे नींद की धुंध में खोने लगी। उसकी सांसें अब पहले से कहीं अधिक शांत थीं। चेहरे पर भी एक मासूम सी शांति उतर आई। भूख के बावजूद थकान आखिर जीत गई। कुछ ही देर में अंकिता गहरी नींद में सो चुकी थी। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, सिर्फ बाहर बरसती बारिश और भीतर सुलगती आग की हल्की चटक। सुबह की पहली सुनहरी किरणें कमरे की बड़ी कांच की खिड़कियों से छनकर भीतर आने लगी थीं। बाहर बारिश थम चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों पर टिकी पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों सी चमक रही थीं। कमरे में अब भी फायरप्लेस की बुझती हुई लकड़ियों से हल्की सी गर्माहट बाकी थी। विशाल की आंखें धीरे धीरे खुली। वो कुछ क्षण बिना हिले डुले छत को देखता रहा, फिर सहज ही उसकी नज़र बिस्तर के दूसरे किनारे पर चली गई। अंकिता अब भी गहरी नींद में सो रही थी। रात भर की थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बालों की कुछ लटें गालों पर बिखरी थीं और पट्टी लगी हथेली तकिए के पास टिकी हुई थी। उसकी सांसें बिल्कुल शांत और लयबद्ध थीं, जैसे कई दिनों बाद उसे सुकून की नींद मिली हो। विशाल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। उसने बिना कोई आवाज किए धीरे से कंबल एक तरफ किया, बिस्तर से उतरा और सावधानी से चप्पल पहन ली, ताकि उसकी आहट से अंकिता की नींद ना टूटे। एक नज़र फिर उसकी ओर डाली। जब यकीन हो गया कि वो अब भी गहरी नींद में है, तो विशाल धीमे कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ गया। बाथरूम का दरवाज़ा भी उसने बेहद सावधानी से खोला और उतनी ही खामोशी से अपने पीछे बंद कर लिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अंकिता अब भी बेखबर गहरी नींद में सो रही थी।